السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جي كيسي عم سبلوك؟ الحمد لله. جي إن شاء الله هم شروع کرتے ہیں. جی الحمد للہ. آج ہمارا رولز کا ڈے ہے اور رولز میں ہم لوگ نمبر اسٹارٹ کر چکے تھے. آج ہم ان شاء اللہ سیکنڈ سرکمسٹانس شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن پاک کی ریڈنگ کے دوران بعض اوقات آپ کو تھوڑا سا آواز کو اٹھا کر کسی حرف کو زیادہ واضح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تاکہ اس کی آواز اس کے نیبرنگ لیٹر سے ذرا پرومیننٹ ہو جائے. اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی اس کی ضرورت ہوتی ہے, یہ بغیر ضرورت نہیں ہوتا, بغیر مقصد کے نہیں ہوتا. اور جیسا کہ فرسٹ سرکمسٹانس میں ہم نے دیکھا تھا کہ تشدید والے حرف کو ظاہر کرنے کے لیے جب آپ اس کے اوپر سٹاپ کرتے ہیں تو آپ کو نبر کرنا پڑتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نبر کا سیکنڈ سرکمسٹانس, اور یہ ایکچولی واؤ مشدد اور یا مشدد سے تعلق رکھتا ہے. آپ واؤ مشدد اور یا مشدد کے اوپر نبر کرتے ہیں جب بھی واؤ مشدد سے پہلے بمہ یا فتحہ ہو اور یا مشدد سے پہلے فتحہ یا کسرہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی آپ واؤ مشدد کے اوپر نبر کرتے ہیں اگر واؤ مشدد سے پہلے بمہ آ رہا ہے یا فتحہ آ رہا ہے. واؤ مشدد کے اوپر نبر کیا جاتا ہے اگر واؤ مشدد سے پہلے بمہ ہو یا فتحہ ہو. جیسے بمہ کے اگزامپل میں آپ ورڈ لکھ سکتے ہیں بی قوتین, اور فتحہ کے اگزامپل میں آپ ورڈ لکھ سکتے ہیں قوامون, اور سیکنڈ حرف تھا یا مشدد. یا مشدد پر اس وقت نبر کیا جاتا ہے جب اس سے پہلے فتحہ یا کسرہ ہو. فتحہ کی اگزامپل آپ لکھ سکتے ہیں جیسے ورڈ الحی القیوم, اور کسرہ کی اگزامپل آپ لکھ سکتے ہیں بتحیہ. اب یہاں پر کیوں نبر کیا جاتا ہے, یعنی یہاں پر ہم کیوں نبر کر کے پڑھتے ہیں؟ اصل میں آپ دیکھیں تو یعنی باقی آپ کسی بھی مشدد لیٹر کے اوپر نبر نہیں کرے, یہاں پر کیوں نبر کرے؟ اس کی سملیرٹی تھوڑی سی آ جاتی ہے سمپل مد لیٹر, سمپل مد لیٹر سے. جیسے فار ایگزامپل الذی یوسوس, رائٹ. اب یہاں پر اگر آپ ورڈ دیکھیں تو الذی یہ یامد ہے اور یوسوس یہ جو ہے یہ یا اندر یا ہے, اور آپ انہیں نا الگ الگ پڑھتے ہیں. اب اگر ایک تشدید والا حرف ہے لائک ورڈ ہے ایاکا اور آپ اسے پڑھے ہیں ایاکا, یعنی آپ اسے بغیر نبر کے پڑھے ہیں, جیسے سمپل سی یو ایس ویس کو پڑھا, جیسے سمپل مد لیٹر اور اس کے بعد دوسرے حرف کو پڑھا, تو یہ ایسا لگے گا جیسے آپ یامدیہ بول رہے ہیں اور یامدیہ کے بعد ایک اور ورڈ بول رہے ہیں, ایک اور وہ سیم لیٹر بول رہے ہیں. یعنی اگر ہم ورڈ ایاکا کو پڑھیں ایاکا ایاکا, تو یہ یوں لگے گا کہ یا مشدد نہیں تھا بلکہ ای اور یاک یہ ورڈز آ رہے تھے, دو ڈفرنٹ یاز آ رہے تھے. تو اس کو واضح کرنے کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں, نبر کرتے ہیں. اسی طرح سے جہاں جہاں آپ نبر کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ والے ورڈز مد لیٹر اور لین لیٹر سے ملتے ہیں. یعنی بی قوہ اگر آپ اس کو الگ الگ پڑھیں گے तो ये लगेगा जैसे आप पढ़े हैं बी कु वह, राइट। और आप पढ़ते हैं ना वर्ड आमनु व आमिलु, तो ये आप देखें यहाँ पे आप ना, यहाँ पे तशदीद मौजूद नहीं है, यहाँ पे अब मर्जी आप बोल रहे हैं बी को वामदिया और वाह यानी सिंपल वाव फतहा। तो वॉइड करने के लिए कि आपकी साउंड सिंपल लेटर मद लेटर और उसके बाद जो दूसरा हर्फ आ रहा है उसकी तरफ ना जाए, इसलिए आप क्या करते हैं नबर करते हैं। क्योंकि कुरान पाक में ना ऐसे वर्ड्स मौजूद हैं जो कि सिंपल मद लेटर के साथ हैं, जैसे अल्लज़ी युवस्विस की मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे वर्ड आता है फी यूसुफ। अब अगर यहाँ पे अब तशदीद नहीं है और आप पढ़ें फी यूसुफ, और अगर किसी तशदीद वाले हर्फ को भी आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो डिस्टिंक्शन नहीं होगी ना। जैसे वर्ड है आमनू व आमिलू, अब यहाँ पे आप दोनों वर्ड्स को अलग अलग करके पढ़ें, बिल्कुल इसको मद लेटर से डिस्टिंक्ट करने के लिए जो है वो नबर करके पढ़ेंगे। और आपको पता है तशदीद फिर समटाइम्स मानी के अंदर ना एक डिफरेंट इफेक्ट भी देती है, तशदीद जो है वो वर्ड के मीनिंग के अंदर समटाइम्स एक डिफरेंट इफेक्ट भी दे रही होती है। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप ये वाजे करें कि मद लेटर सिंपल मद लेटर कौन सा है। और मुशद्दा से लीन लेटर्स में भी हम करते हैं, जैसे वर्ड है अल हय्यु, और इसी तरह से इत्तकौ व आमनु, तो आप उसको यूं नहीं पढ़ेंगे इत्तकौ व आमनु, क्योंकि एक्चुअली ये वाली साउंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपको कहीं पर भी कोई ऐसा लीन नहीं मिलेगा जिस लीन के बाद वही लेटर आ रहा हो, यानी चूंकि मुशद्दद में यही होता है ना, दो सिमिलर लेटर्स आ रहे होते हैं, तो आपको कोई ऐसा लीन नहीं मिलेगा जिसको आप यूं पढ़े इत्तकौ व आमनु, यूं नहीं, बल्कि आप कैसे पढ़ेंगे इत्तकौ व आमनु। ये वर्ड आता है सूरतुल अनआम में इत्तकौ व आमनु, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी अल हय्यु अल क़य्यूम, तो यहाँ पे भी आप या मुशद्दद के ऊपर नबर करेंगे, क्योंकि ये साउंड लीन में एग्जिस्ट नहीं करती कि आप इसे पढ़ें अल हय्यु या अल क़य्यूम, तो आप देखें कि ये तशदीद का इफेक्ट नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर आप सिंपल मद लेटर को, सिंपल लीन लेटर को मुशद्दद मद लेटर और मुशद्दद लीन लेटर, एक्चुअली फिर वो मद और लीन तो नहीं रहते लेकिन मुशद्दद वाओ और मुशद्दद या से डिस्टिंक्ट करने के लिए यहाँ पर आप नबर करेंगे। और ये जो जो नबर है ये हमेशा मौजूद होगा, ऐसा नहीं होगा कि जैसे फर्स्ट जो सर्कमस्टांस था ना वो तो सिर्फ वक्फ करने में था, ये वाला जो नबर है ये वक्फ के अलावा भी मौजूद होगा। अगर आप इन वर्ड्स में से किसी के ऊपर वक्फ करते हैं फिर तो डेफिनेटली नबर होगा ही, लेकिन अगर आप वक्फ नहीं करें तो भी आप यहां पर नबर करके करें। ओके, इसकी एग्जांपल इस वाले सर्कमस्टेंस की एग्जांपल आपको बहुत ज्यादा ना सूरह मरियम में मिलेंगी इंशाल्लाह। सूरह मरियम की जो एंडिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा नबर के ऊपर हैं। एंडिंग से मुराद ये कि सेकेंड लास्ट लेटर, क्योंकि मुशद्दद हर्फ के ऊपर तो नहीं आप रुके होते, जैसे हय्या खौफिया शरुकिया, तो बहुत सारे वर्ड्स में अब ये स्टॉपिंग वाला नबर नहीं है क्योंकि ये लास्ट लेटर पे आप नहीं नबर करें, वो तो अलिफ है, और बल्कि आप उससे पहले नबर करें। तो इसलिए ये जो सेकंड सर्कमस्टेंस है ये आपको बहुत ज्यादा वहां पर मिलेगा जी। आप निकाल लीजिए इसमें ग्रामेटिक आयात पे एंड हो रहा है, कोई एक आध बीच में से मिस होगी जिस पे नबर ना हो, वरना सारी ही आयात के ऊपर नबर है। मैं निकाल के आपको बताती हूँ जी। जैसे फर्स्ट आया है असव व कान, सूरह अल बकरा में भी ये वर्ड है ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون, तो यहाँ पे ये होगा नबर असव पर असौ वा जो है ये नबर होगा। और सूरह मरियम में आप देखिए जकरिया, तो यहाँ पे आप या के ऊपर स्टॉप तो नहीं करे, राइट? इसलिए ये सेकंड सर्कमस्टेंस है, जकरिया खौफिया। ये इस बात की आपको अंडरस्टैंडिंग है ना कि ये सेकंड है, फर्स्ट नहीं है, क्योंकि आप मुशद्दद हर्फ पर रुक नहीं रहे, राइट? तो इसमें देखिए फोर्थ आया भी, शकिया वलिया रुबिया समिया ऐतिया, एक्सेप्ट आया नंबर 9 की एंडिंग डिफरेंट है। इसमें बीच में भी वर्ड्स आ रहे हैं, देखिए आया नंबर 9 के बीच में वर्ड आ रहे हैं, قال ربك هو علي هين, तो अलैया या मुशद्दद से पहले फतहा है, हयिन या मुशद्दद से पहले फतहा है, तो यहाँ पे नंबर करेंगे जी। इसकी डेफिनेशन है, यानी इस को आप कैसे कहते हैं कि सेकंड जो सर्कमस्टांस है वो वाव मुशद्दद से पहले दम्मा या फतहा, और या मुशद्दद से पहले फतहा या कसरा। तो अगर आपको ये कहीं पर मिल जाते हैं तो फिर आप नंबर करके पढ़ेंगे, ठीक है? सविया आशिया सोबिया तकिया, ये रिदमैटिक आयात हैं जिनमें के लास्ट में आपको नंबर मिल रहा है सेकंड सर्कमस्टांस वाला। या साकिन से पहले फतहा हो ना तो वो लीन बनता है, और अगर कसरा हो तो वो मद बनती है, और वाव मुशद्दद से पहले दम्मा या फतहा, क्योंकि वाव साकिन से पहले अगर दम्मा हो तो वो मद बनती है, और अगर फतहा हो तो वो लीन बनती है। इसको आप ऐसे याद रखें तो आपको ये ज्यादा आसानी से याद रह जाएगा कि जो लीन के सिंबल्स है ना, साइन एंड सिंबल्स, अगर वो मुशद्दद आ रहे हैं तो, और अगर जो मत के सिंबल्स हैं वो मुशद्दद आ रहे हैं तो नबर होगा। जैसे वाव साकिन से पहले दम्मा हो, राइट, तो वाव मुशद्दद से पहले दम्मा होगा तो नबर आ जाएगा। अगर या साकिन से पहले कसरा हो तो वो मत होते, तो या मुशद्दद से पहले कसरा आ जाएगा तो वो नबर होगा। इसी तरह से लीन कब होता है, वाव साकिन से पहले फतहा, तो अगर वाव मुशद्दद से पहले फतहा आ जाएगा तो नबर होगा, और या लीन कब होता है, जब या साकिन से पहले फतहा, तो अगर या मुशद्दद से पहले फतहा आ जाता है तो वो नबर होगा, राइट? क्योंकि इस तरह से ये फतहा कसरा याद रखना आपका मिक्स हो जाएगा, तो आप इसको इसके इसकी रीजन इसकी हिकमत से याद रखें कि हम इसमें नबर करते क्यों हैं। तो जब आपको वो रीजन याद होगी तो फिर आपको ये हरकत याद रखना मुश्किल नहीं लगेगा। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सर्कमस्टेंस करते हैं। जी पूछिए, मीनिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? एसएच या मुशद्दद से तो मुझे नहीं पता, लेकिन नून मुशद्दद से, जैसे आप देखें कि अगर आप सिंपल नून बोलते हैं और तजदीद वाला नून बोलते हैं तो वो नून मुशद्दद ताकीद के लिए भी इस्तेमाल होता है ना, और अमूमन जो तजदीद आ रही होती है वो एम्फेसिस के लिए आ रही होती है, तो जो है वो कहीं ना कहीं मीनिंग के ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा होता है। और जैसे अगर आपने ग्रामर में पढ़ा हो तो वो जो होते ना फोर लेटर मेकअप होता है, जैसे कत्तला दर्रबा, उसकी तशदीद जो है वो बहुत इफेक्ट डालती है, कि जैसे सिंपल कतला का जो वर्ड होता है वो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ नबर, ठीक है, कतला का जो सिंपल वर्ड होता है उसका मतलब होता है ना कत्ल करना, और जो कत्तला का मतलब होता है वो बहुत बुरी तरह से, कि आप किसी के पीसेस करके तो वो करें, तो उसमें कत्ल यानी तशदीद आ रही होती है। तो तशदीद लेटर्स पर मानी पर असरअंदाज होती है। आई एम नॉट श्योर या मुशद्दद और वाव मुशद्दद पर किस तरह से होती है, लेकिन डेफिनेटली स्कॉलर्स जो हैं वो इन सब को के इवन हैवीनेस और लाइटनेस में जो एक बोलने से एक आपका एम्फेसिस आता है, बिल्कुल ऐसे ही तशदीद में भी लेटर्स को बोलने से आपकी यानी जैसे वो असर भी होता है ना एक, क्योंकि कुरान पाक का तो एक असर है ना दिल के ऊपर, वो भी बढ़ता है इन सब चीजों से। जी हम नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं, नेक्स्ट सर्कमस्टांस के ऊपर। जी नेक्स्ट सर्कमस्टांस है कि जब कभी आप हमजा के ऊपर वक्फ करें और हमजा से पहले मद लेटर या लीन लेटर मौजूद हो तो वहां पे नबर किया जाता है। इसके अंदर आपको कुछ बातें याद रखने की जरूरत है। हमजा आपका लास्ट लेटर होगा, ठीक है, हमजा आपका लास्ट लेटर होगा। नंबर टू, हमजा ऐसी हरका के साथ मौजूद होना चाहिए जिसको आप साकिन कर सकें। ठीक है, अगर आप हमजा को साकिन नहीं कर पा रहे ना, इट मीन्स वहां नबर नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, हमजा की कौन कौन सी हरका के साथ आप हमजा को साकिन कर सकते हैं। चले आपसे मैं सवाल करती हूँ कि आप मुझे बताइए कि हमजा के पास कौन सी हरका मौजूद हो तो आप उसको साकिन नहीं कर सकते, इसका छोटा आंसर होगा। अगर हमजा हमजा के ऊपर कौन सी ऐसी हरका होनी चाहिए तो आप उसको साकिन नहीं कर सकते, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फतहतान, गुड। फतहतान ऐसी हरका है जिसको आप साकिन नहीं कर सकते, राइट। बाकी तनवीन को आप साकिन कर सकते हैं, सिंपल हरकात को भी आप साकिन कर देते हैं, फतहा हो, कसरा हो, बम्मा हो तो भी साकिन हो जाते हैं, बम्मा तान हो, कसरा तान हो तो भी साकिन हो जाता है हमजा। मगर अगर हमजा के ऊपर फतहा तान हो तो हमजा साकिन नहीं होता। जैसे वो वर्ड आता है ना सवाअन, जब आप सवाअन के ऊपर स्टॉप करते हैं तो आप कैसे करते हैं, मदल अवद के रूल के अकॉर्डिंग, तो आप कैसे पढ़ेंगे सवा। इसलिए हमजा लास्ट में मौजूद होना चाहिए। नंबर टू, हमजा के पास फतहा तान ना हो, ठीक है, तभी आप उसको साकिन कर सकते हैं और तभी हम नबर करेंगे। अगर फतहा तान है फिर नबर नहीं करेंगे। और तीसरी बात क्या है, वो ये कि हमजा से पीछे वाला लेटर कोई भी मद लेटर या लीन लेटर होना चाहिए, यानी या तो अलिफ हो मदिया या वाव मदिया या मदिया और या फिर वाव लीन या लीन, ठीक है। इस सूरत में फिर हम हमजा के ऊपर जब रुकेंगे तो हम क्या करेंगे, नबर करके रुकेंगे। जैसे ये मेरे पास सूरत मरियम ही खुली हुई थी और इसमें मुझे एक वर्ड नजर आ रहा था आय नंबर 48 में, आप भी निकाल लीजिए तो आप इस वर्ड को देख सकते हैं। 48 में वर्ड है, पेज नंबर है 308, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको तीन पॉइंट्स बताए हैं कि तीन बातें आपने याद रखी हैं। सबसे पहले कि हमजा वर्ड का लास्ट लेटर हो। नंबर टू, हमजा के पास कोई भी हरका हो सकती है मगर फतहा तान नहीं, क्योंकि फतहा तान की सूरत में ना जब आप उसके ऊपर वक्फ करते हैं तो आप उसे साकिन नहीं कर सकते, हमजा को साकिन करेंगे तब नबर की जरूरत होगी। नंबर थ्री, हमजा से पहला वाला हर्फ, हमजा से पीछे वाला हर्फ कोई भी मद लेटर या लीन लेटर हो, ठीक है। 308 पे है सूरत मरियम आया 48, इसमें वर्ड आ रहा है अल्लाह अकूना बिदुआई रब्बी शकिया। अगर आप इस वर्ड के ऊपर रुक जाते हैं बिदुआई, तो यहां पर देखिए सारी बातें पूरी हो रही है। लास्ट लेटर क्या है, लास्ट लेटर हमजा है, हमजा के पास कौन सी हरका है, कसरा, सो फतहा तान नहीं है, इसलिए हम इसको सेकंड जो बात है उसको भी टिक कर देते। और हमजा से पहले क्या है, अलिफ मदिया, अलिफ प्रेसिडेड बाय फतहा, सो अलिफ मदिया। यहां पर जब आप रुकेंगे तो आप क्या करेंगे, नबर करके रुकेंगे। कैसे नबर करेंगे, बी दुआ, ठीक है, बी दुआ, थोड़ी सी आवाज को ऊपर करके आपने फिर हमजा को हिट करना है। आप देखें कि सिंपल भी जब आप हिट करते ना तो हमजा के लिए जर्की साउंड आती है, बी दुआ फॉर एग्जाम्पल। आई नो इट्स नॉट राइट टू से, लेकिन अगर अलिफ को बीच में से हम उम्मीद कर दें तो हम इसे कैसे करेंगे, बी दुआ, राइट। और जब आप हमजा मत के बाद स्टॉप करें तो आप थोड़ा सा इसको खींचे मत करें और फिर नबर करके स्टॉप करें, बी दुआ, यूं करके। अब यहां पर क्यों हम नबर करते हैं, यहां पर नबर की क्या रीजन है, यहां पर इसलिए नबर किया जाता है क्योंकि जब आप यू कॉन्टिन्यूसली पढ़े होते ना और फिर जब आप इस वर्ड के ऊपर स्टॉप करें जैसे हमजा के ऊपर, तो चूंकि इससे पहले मद या लीन लेटर मौजूद है, राइट, नबर नबर करने से पहले आप आपका माउथ या तो बिजी होगा मद लेटर को प्रोनाउंस करने में या बिजी होगा लीन लेटर को प्रोनाउंस करने में। और जैसे कि आपको पता है मद लेटर का जो मखरज है वो बहुत क्लियर नहीं है, वो हक्क नहीं है ना, राइट, मुकद्दर मखरज है उसका, अलजौफ है तो वो स्ट्रांग नहीं है. इसी तरह से जो लीन है इसके अंदर ईज है, इसका मखरज तो मुहक्कक है, यानी यालीन का मखरज वसतुल लिसान है, वाउलीन का मखरज शफतान है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसके अंदर नरमी है, यानी एक्सट्रीम ईज है. इस ईज की वजह से समटाइम्स ऐसा होता है या तो जौफ में आपका माउथ बिजी है और या फिर इस ईज में बिजी है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका हमजा क्लियर ही नहीं होता, यानी अदुआ. तो अगर आप उसको सिंपल यू पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका हमजा कभी भी वाजे नहीं होगा. और क्यों वाजे नहीं होगा? क्योंकि हमजा से पहले या तो आप मुकद्दर मखरज में हैं जो कि डिस्टिंक्ट नहीं है और वो वेरी वीक मखरज है, और या फिर आप मुहक्कक मखरज में तो हैं लेकिन लीन के अंदर क्वालिटी लीन की है, नरमी की क्वालिटी है, तो वो इतना नरम मखरज है कि उसमें आपका जब मुंह बिजी है तो क्या होगा कि आपका हमजा स्किप होने का खतरा है. इस वजह से फिर आप उसको स्ट्रांग करके हमजा को यहाँ पे नबर के साथ स्टॉप करते हैं. आपने अमूमन कुरान को सुना होगा कि वो जब इस तरह से हमजा के ऊपर स्टॉप करते हैं ना तो वो पढ़ते हैं, यानी थोड़ा आवाज को ऊंचा करके, अस्समा औलिया, इस तरह से. तो ये यहाँ पे एक्चुअली क्या है, नबर के साथ हम स्टॉप करें. जैसे वर्ड आते हैं ना लीन के साथ, जैसे वर्ड आते हैं शई ईदन, तो आप कैसे पढ़ते हैं शई ईदन को, शई शई. अब आप देखें कि आप मुहक्कक मखरज में हैं लेकिन चूंकि वो लीन है ना बहुत ईज की तरफ जा रहा है, शई बहुत नरमी की तरफ जा रहा है, शई, तो फिर आपको थोड़ा आवाज को ऊंचा करके हमजा को वाजे करने की जरूरत होगी. राइट, इसमें आप देख लीजिए जैसे आयत नंबर 67 में सी सूरा में एक वर्ड आ रहा है शैअन. अब यहां पे अगर आप देखें ना शैइन, जैसे अगर वर्ड है ना शैइन या शैउन फिर तो आप नबर करेंगे, और अगर वर्ड है शैआ शैअन तो फिर आप क्या करेंगे, नबर नहीं करेंगे, फिर आप मदुल इवद करेंगे. फिर आप कैसे करेंगे, सिंपल शैआ शैआ बगैर नबर के. एक एक एग्जांपल मैंने आपको मेमोरी से दी थी वर्ड सवा अन की, अगर आप वहां रुकते हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे, सवा आ, वहां पे भी बगैर नबर के पढ़ेंगे. और इसमें जरूर होमवर्क करें, डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं वो फाइंड आउट करें और फिर रीजन भी साथ में लिखें. जितना आप रीजन को रिपीट करेंगे ना इंशाल्लाह वो आपके माइंड में बैठ जाएगी. तो अगर हम इसको रिव्यू करें तो हमने फर्स्ट सर्कमस्टांस में क्या देखा कि जब आप मुशद्दद हर्फ के ऊपर रुकते हैं तो आप नबर करके वक्फ करते हैं सिवाय नून मीन मुशद्दद और कलकला हर्फ मुशद्दद के. स्टांस में हमने देखा कि ये वक्फ में नहीं होता, ये मिलाकर पढ़ने में होता है. और इसमें क्या है कि अगर आपके पास वाव मुशद्दद हो, ऐसा वाव मुशद्दद जिससे पहले बम्मा या फतहारा हो, ऐसी या मुशद्दद जिससे पहले कसरा या फतहारा हो, तो फिर आप क्या करते हैं उसको नबर, उस वर्ड को नबर करके पढ़ते. और इसमें भी सच कोई एक्सेप्शन नहीं है. और इसकी वजह क्या है कि आप इसको सिंपल मद और लीन से डिस्टिंक्ट करते हैं, राइट, थोड़ा स्ट्रांग करके पढ़ते हैं सिंपल मद और लीन से डिस्टिंक्ट करने के लिए. फिर थर्ड में हमने पढ़ा कि अगर हम हमजा के ऊपर वक्फ करते हैं और हमजा से पहले मद लेटर या लीन लेटर मौजूद है तो हमजा के ऊपर नबर करके वक्फ किया जाता है ताकि हमजा स्किप ना हो, ताकि हमजा ऐसा ना हो कि हमसे हमजा मिस हो जाए. इंशाल्लाह इसको यहीं तक रखते हैं, कोशिश करें कि 5-5 एग्जाम्पल सबकी फाइंड आउट करें. इंशाल्लाह अब हमारे दो सर्कमस्टांस रह गए हैं तो आई होप सो कि हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. इसकी एग्जाम्पल है ये थर्ड सर्कमस्टांस में आ जाएगी ना, कुरु इन आई प्रोबेबली वर्ड होगा और फिर जब आप इसके ऊपर वर्क करते हैं तो ये वर्ड बन जाएगा कुरु, राइट. तो ये यही हमजा के ऊपर स्टॉप की एग्जाम्पल है. बारकल्लाहु फीकुम, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक करते हैं इसको कंटिन्यू मजीद. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.